पहले सूरत सुआफात थी, अब सूरत स्वाद है। दोनों में स्वाद का लफ्ज है। कुरान पाक की कुछ सूरतें हरूफ तहज्जी के साथ शुरू हुई हैं। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर एक लफ्ज भी जो आया है वो भी बामानी है। स्वाद जो है हरूफ मुकद्दात में से है। और कुछ सूरतें अब इसके बाद आप देखेंगे ऐसी होंगी जो एक एक लफ्ज से शुरू होंगी, स्वाद काफ। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वाद वल कुरआनिज़्ज़िक्र। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। स्वाद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला। उन्होंने हर चंद चीखों पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो जादूगर और झूठा है। क्या है इसका जादू और क्या है झूठ। अजअल आलिहतन इलाहं वाहिदा, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया। वाकई ये बहुत ही अजीब बात है। आज भी लोगों को यही हैरत होती है। उनको भी यही थी, कहते थे इतनों को पूजते हैं फिर उनको छोड़ के एक को पूजे। आज के इंसान को भी यही लगता है, सबसे कट के एक रब का हो जाए, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा, और ये अल्लाह के नबी की दौर में वाकया पेश आया तो उसी की तरफ इशारा है। आपने लोगों को बुला के दावत दी तौहीद की, तो जब सुनी बात का अच्छे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तब उलाहब जैसे लोग उठे, कहा इसलिए बुलाया था, मेरा वक्त जाया कर दिया और गुस्से से चले गए। इसका तस्कर अगली आयतों में। वन तलकल मलऊ मिनहुम, इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में तो कोई गरज नहीं। ये वही रवैया है जो कुरान पढ़ने के बाद भी होता है कि नहीं 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 बस जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब जहां से आए थे उधर ही लौट चलो। यकीनन इस बात में कोई गरज नहीं, हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी नहीं। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ घड़ी हुई बात है, यानी खुद बनाई हुई बात। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नासिल किया गया, यानी क्या सिर्फ यही शख्स रह गया था जिसको अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुनना था, हम बड़े बड़े सरदारों को छोड़ के। हाँ, दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं। या क्या इनके पास तेरे जबरदस्त फैयाज रब की रहमत के खजाने हैं। पूरा शऊर को बेदार करने वाला सबक है, आप देखेंगे सवालिया अंदाज है इसमें बहुत ज्यादा। या क्या आसमानो जमीन और इनके दरमियान की हर चीज की बादशाहत इन्हीं की है, तो फिर ये रस्सियां तान कर चढ़ जाएं। ये भी बड़े बड़े लश्करों में से लश्कर पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले कौमे नूह और आद और मेहू वाले फिरौन ने छुटलाया था, और समूत ने और कौमे लूत ने और एका के रहने वालों ने भी यही बड़े लश्कर थे। इनमें से एक भी ऐसा न था कि जिसने रसूलों की तकजीब न की हो। बस मेरी सजा इन पर साबित हो गई, इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है जिसमें कोई तवक्कुफ और ढील नहीं। वकालू रब्बना जिल्लना, और उन्होंने कहा हमारे रब हमारी सरनविश्त तू हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे, यानी जो होना है वो आज ही हो जाए। अल्लाह के नबी को कहा गया इस बिरलामा यकुलून, आप इनकी बातों पर सब्र करें। और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था और यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। ये थी आयत नंबर 1 से 17, 1 to 17। इसका उनवान लिखिए सबसे कटकर एक के हो जाएं। बड़ी अजीब बात कहते हो। हर दौर में लोगों को यही मसला लगा कि सारी सोसाइटी से कट के हम दूसरी तरफ जाएं। अब देखिए कि एक वो रुख है, एक बहुत ही अच्छी मिसाल मेरे जहन में रहती है जो मैंने बहुत शुरू में सीखी थी अपनी उस्ताद से। वो कहती थी देखो जब दरिया बह रहा होता है ना, दरिया से मेरा जैसे अब झरना सोचें, आप उसमें जो भी चीज डालेंगे ना वो नीचे गिरती जाएगी, आराम से गिरेगी ना। पेंसिल डाल दें गिर जाएगी, आप उसमें पत्ता तोड़ के डाल दें गिर जाएगा, प्लेट डाल दें गिर जाएगी। कहते थे ये कौन सी बहादुरी है। असल बहादुरी क्या है कि जिधर पानी जा रहा है उससे ऑपोजिट रुख पे चीज जाए। और जैसा कि हजरत मरियम की किफालत के सिलसिले में हुआ भी था, सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके। तो कहती थी ये जो लोग मुआशरे के लोग 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 जिधर जा रहे होते हैं ना, अगर तुम भी उसमें बह जाओगे तो वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं, पानी तो उसी तरफ बहाता है। अगर तुम कुछ खास काम करना चाहते हो ना तो उलट रुख पे चलो। और आज के दौर का तो यही फितना है, लोग नुमाया होना चाहते हैं। लोग यूं चल सकते हैं, मैं उल्टा चल के दिखाऊंगा। लोग पाँव पे चल सकते हैं, मैं सर पे चल के दिखाऊंगा ताकि मेरा नाम दुनिया के रैकेट में आ जाए। तो ये जो वक्त के रिवाज से उलट रुख पे चलना होता है ना, यही बंदे का मुकाम बनाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसे ही बंदों में से एक बंदा था दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह का चुनावा नबी उनके साथ क्या था? फरमाया, इन्ना सखरनल जिबाल माहू, हमने पहाड़ों को इनके ताबे कर रखा था कि इसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह ख्वानी करें, और परिंदों को भी जमा होकर सबके सब इसके जेरे फरमा रहते, और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत कर रखा था और इसे हिकमत दी थी और बातों का फैसला करना। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जब ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे बस इनसे डर गए। उन्होंने कहा, खौफ न कीजिए, हम दो फरीके मुकदमा हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कीजिए और ना इंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। अब वो मुकदमा पेश करते हैं, सुनिए, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 यानी 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, दुम्बी कहते शीप को, लेकिन ये मुझसे कह रहा है अपनी ये एक भी मुझको ही दे दो और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती बरतता है। आपने फरमाया, इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल, बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इनको आजमाया है, फिर तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रजू किया, और हमने भी इनका वो कसूर माफ कर दिया, यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। फिर दोबारा अल्लाह ने उनको चुना अपने काम के लिए, कैसे? या दाऊदू, ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। ये थी आयत नंबर 18 से 26, आयत 18-26। इसका उनवान है, अक्सर शरीक एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। हाईलाइट करने के काबिल जो आयत है इस हिस्से में वो है आयत नंबर 24, 24। इन्ना कसीरम मिनल खुलता इला यबगी बादुहुम अला बाद। इस आयत पे जब मैं पहुंचती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि बंदा कभी किसी के साथ शराकत ना करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हम एक घर में रहते हुए भी शरीक होते हैं, हम दुनिया में काम करते हुए भी शरीक होते हैं। ऐसे वक्त में वो बंदा जो चर्ब जुबान हो, खूब खुल के बात करने वाला हो, या बहुत ताकतवर हो, अपना हक लेना चाहता हो, वो फौरन दूसरे का हक छीनता है। अमली मिसाल पीछे भी शायद दी थी कि बाद दफा हम खाना खाने के लिए किसी जगह जमा होते हैं, घर वाले ने कुछ चीजें गिन के रखी होती हैं हर एक के लिए, अब वो सारे शरीक हो गए उस एक डिश में। अगर वहां आप समझ रहे हैं कि कबाब रखे हैं 20 और आप 15 लोग थे या 18 लोग थे, तो आप सब जो 20 लोग थे ना, वहां 18 जो लोग थे, वो उन कबाबों की डिश में शरीक हो गए। अल्लाह ताला कहते हैं जो शरीक दूसरे के हक की तलफी करेगा वो उसके ऊपर जुल्म करेगा। और हाल देख लीजिए आज उम्मत का, सिर्फ इस एक चीज को देखें ना कि जहां हमें कहीं शराकत करनी पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, देखा खूब मजा बातों में उतारा, बेटे को भी उसको पसंद करते हैं जो खूब दो दो चार सुना सके, कहते हैं देखा दूसरे भाई को कैसे बेवकूफ बनाया। मैं तो हैरान होती हूँ, लोग सिर्फ शराकत जो है वो और छारी छोड़ दे जो विरासत की शराकत पे जुल्म करते हैं दूसरों के साथ। मैं कहती हूँ जिसको विरासत बांटते हुए अल्लाह ने याद आया उसको कभी भी नहीं आएगा, इल्ला माशाल्लाह। ये हम रख लेते हैं, ये तुम रख लो, ये कार आमद है, ये हमारी, ये बेकार, ये जोड़ा अच्छा, ये मैं रख लूँ, इसके बदले में किसी गरीब को किसी यतीम को दूसरा जोड़ा रख दिया उसके लिए। इतनी बड़ी आयत है, यकीन करें मैं इस आयत को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल अंदर से थक थक करता है, और ना चाहते हुए भी मैं अपना मुहासबा करने लगती हूँ ये सोचकर कि मैं तो नहीं किसी की शराकत में नुकसान दे रही। आप किसी सीट पे बैठते हैं ना गाड़ी पे, तो दो की सीट साथ जुड़ी हुई है ना, तो वहां भी सोच के बैठना पड़े आपके, मैं पाँव पसार के बैठ जाऊँ दूसरा मेरे सब दुब के बैठे, नहीं। इंसान का पता ही सफर में चलता है कि वो दूसरे को कितना दुख देता है, तो इससे बहुत गहरा असूल निकलता है। अल्लाह ताला हमें लेने वाला बना दे। आगे जमीनों आसमान में एक ईमान वाले का नजरिया और एक काफिर का नजरिया, इस आयत को बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वमा खलकनस समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमानों जमीन और इनके दरमियान की चीजों को ना हक पैदा नहीं किया, ये गुमान तो काफिरों का है। इस हिस्से को हाईलाइट कीजिए, ये गुमान तो काफिरों का है, सो काफिरों के लिए खराबी है आपकी। अम नजलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए इनके बराबर कर देंगे जो हमेशा जमीन में फसाद मचाते रहे, या परहेजगारों को बदकारों जैसा कर देंगे? ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें और अकलमंद इससे नसीहत हासिल करें। ये थी आयत नंबर 27 से 29। इसका अनवान लिखिए, ये कायनात बेमकसद नहीं बनाई गई। हाईलाइट कर लीजिए उस हिस्से को जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू। आज हम एक मुसलमान को और एक काफिर को जब एक जैसी जिंदगी बसर करते देखते हैं तो हम कहते हैं अब क्या करें, जैसे सब करें हम भी करें। अल्लाह ताला ने इस आयत पे रोक के हमें ये नसीहत कर दी कि काफिर जो जिएगा वो इस सोच के साथ जिएगा कि ये दुनिया बातिल, लब्बे मकसद फन ऐश मस्ती, इसके अलावा मोमिन इस दुनिया को एक बामकसद दुनिया समझता है। फर्क होना चाहिए दोनों के लाइफस्टाइल में कि नहीं? और मैं सोचती हूँ ये नुक्ता है जो आप अपने बच्चों को, जो अपने माहौल और सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो, उनको इस आयत पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता सकते हैं। बस बच्चे कहते हैं वाई वी नॉट, क्यों नहीं हम, क्यों नहीं, वाई इस्लाम इज सो रिजिड, हम ऐसे नहीं। मैंने एक मौके पे अपनी यंग क्लास की बच्चियों से ये सवाल किया था और मैं उनसे ऐसे सवाल इसलिए करती हूँ कि वो सच बहुत बोलती हैं, बड़े लोग दिल में रखते हैं वो सच बोलती हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप बताएं कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया कि आपका दिल चाहा कि मैं मुसलमान ना होती? यकीन करिए उन्होंने हाथ खड़े किए। कब? मसलन एक बच्ची थी छोटी सी थी, उसने कहा व्हेन आई एम फास्टिंग और मेरी फ्रेंड मेरे सामने मेरी फेवरेट चीज खा रही थी कैंटीन से लेके, तो मैंने कहा हाय मैं मुसलमान ना होती, मुझ पे रोजे फर्ज ना होते और मैं ये खा रही होती। किसी ने कहा यस जब हमारी मम्मी हमें रोकती है रात को कहीं जाने से, किसी ने कहा जब हमें ये, यानी उनके दिलों में ये सवाल थे उन्होंने सच कह दिया। तो कितना प्यारा नुक्ता नजर आ गया कि वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू। बहुत प्यारी आयत है, यकीन करे एक मुसलमान और एक नॉन मुस्लिम के लाइफ स्टाइल को डिफ्रेंशिएट करने वाली ये आयत है। सोच का फर्क है, हर सवाल का एक जवाब दिया करें बस। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू, और अल्लाह हमें बामकसद जिंदगी बसर करने वाला बना दे। आगे देखेंगे आयत 30 से। हज़रत सुलेमान अब जो दाऊद ही के बेटे थे उनकी बात हमारे सामने पेश की जा रही है, इसको भी सुनते वक्त हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, उस पर तवज्जो रखिएगा। वहबना अली दाऊद सुलेमान, और हमने दाऊद को सुलेमान नाम का बेटा था फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज रौ खासे घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी यहाँ तक के आफ्ताब छुप गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, इनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर इसने रजू किया और कहा रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिम मिन बादी, ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को इनके मातहत कर दिया जो आपके हुक्म से जहाँ आप चाह नरमी से पहुंचा देती, और ताकतवर जिन्नात को भी इनका मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। हाजा अता उना, ये हमारा दिया है, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं, इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। आयत नंबर 30 से 40, 30 to 40, उनवान लिखिएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश दो मौके पर। दो वाक्यात आपने सुने, पहला वाक्या जिसमें घोड़ों को हाथ रखने की बात थी, कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुछ घोड़े थे उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी देखभाल में लगे रहे, इतने में सूरज गरूब हो गया और नमाज भूल गई। जब नमाज छूटी इतना मलाल आया कि उन्होंने अपने मनपसंद घोड़ों को ज़िबा कर दिया कि इनकी मोहब्बत में मेरी नमाज खत्म हुई है। उनके तो घोड़े ज़िबा हुए थे, हमारा क्या क्या ज़िबा होगा जो हमारी नमाजों को ले जाता है। और दूसरा जो वाकया हमने पढ़ा जिस्म डालने का, इसके बारे में रिवायात में आता है, सही बुखारी की और मुस्लिम की भी रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान ने एक मरतबा कहा कि आज की रात मैं अपनी तमाम बीवियों से हम बिस्तरी करूंगा। कहते हैं कि इनकी या 70 बीवियां थी या 90 थी, बस 100 तक भी कहते हैं। इन्होंने कहा आज रात सबसे ताल्लुक करूंगा, फिर हर एक औरत प्रेगनेंट होगी और उससे बेटा पैदा होगा और उनको अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद बनाऊंगा। नीयत भी अच्छी, करने वाला नबी, जायज हलाल, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा। और आपको होता है कि वो सारी बीवियों में से एक बीवी प्रेग्नेंट हुई और जब पैदा हुआ तो गोश्त का लोथड़ा, आधे धड़ का बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह के नबी ने हजरत सुलेमान अगर इंशाल्लाह कह देते तो हर बीवी से मुजाहिद पैदा होते। ये सही बुखारी और मुस्लिम है और असनुल बयान में मौजूद है, आप बाद में पूरी पढ़ लीजिएगा। आज कहते हैं गुलाम बुजुर्ग हैं वो जो चाहते होते हैं। अल्लाह का नबी, नीयत भी अच्छी और कहा बच्चा पैदा होगा, नहीं होगा तो नहीं हुआ, جو جس کی سنے اور جس کی چاہے نہ سنے، یہ اس کے کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھایا جائے، نہ کہ انسانوں سے. ایک ایسے ہی بندے کو جس کا نام اللہ تعالیٰ یہاں پیار سے ایوب کے نام سے لیتا ہے. ایوب کے نام سے اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو یاد کرتا ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا. کیا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. کیا کہا؟ اپنا پاؤں مارو، نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے. اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دو، اور قسم کا خلاف نہ کر. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، اور وہ بڑا نیک بندہ تھا، اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا. ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا. اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا. یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے. اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. وہ کون سی ہے اس کو آگے دیکھیں گے. یہ تھی آیت نمبر 41 سے 49، 41 سے 49. اس کا عنوان ہے چنے ہوئے بندے بھی آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے. آج ہم سوچتے ہیں ہم ذرا سے نیک ہوں گے نا تو دیکھنا پھر ہمارے تو اوپر کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی، اور بس دیکھنا آپ تو انعام برسیں گے. تو تیار رہیے مشکلات کے لیے. اگر آپ کی زندگی اللہ کی طرف جڑنے والی ہو گئی، آزمائشیں تو آئیں گی، اور یہ آزمائشیں اصل میں ہمیں پرکھنے کے لیے آتی ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب جنتیوں کا قصہ سنیں تاکہ آپ کی تھکن دور ہو جائے. فرمایا جنات یتنے مفتحت لہم الابواب، ان کو صرف فیل کیجئے گا آپ ان آیتوں کو. پیچھے ذکر تھا نا متقین کے لیے اچھے ٹھکانے کا. کہا یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جن میں با فراغت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے میوے، قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں. شراب یعنی پینے کی چیز، عربی میں شراب شریبہ سے ہے، پینا یا پینے والی چیز. اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں ہمارا خاص عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہونا ہی نہیں، یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے، دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ، یہ ہے پس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ، اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. یہ ایک فوج جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں. یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے. وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے سب سے پہلے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے. اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، کیا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں، یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا. آیت نمبر 50 سے 64، 50 سے 64. عنوان ہے، یہ آخری حصہ ہی اس کا عنوان ہے، یاد رکھو دوزخیوں کا جھگڑا ضرور ہوگا. جنتیوں کے عیش اور آرام کو بھی ہم نے دیکھا، اور دوزخیوں کے جھگڑوں کو بھی دیکھا. ایک جھگڑا وہ ہے جو دنیا میں اس راہ پہ چلنے سے اٹھتا ہے جب بندہ نیکی کی طرف آنے لگتا ہے، اور ایک وہ جھگڑا ہوگا جو جہنم میں ہوگا. انسان چوز کر سکتا ہے کہ کس کو وہ چھوٹا سمجھ کے قبول کر لے اور اپنے لیے جنت کے راستوں کو آسان کروا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں کی فہرست میں شامل کر لے. اب سورت کا آخر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیا؟ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں. جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے. कौन सी? क़यामत की, जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। मुझे इस बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म ही नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे, मेरी तरफ वक्त यही वही की जाती है कि मैं तो साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ, जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया, और इसने तकब्बुर किया, और वो था ही काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे इसे सजदा करने से किस चीज ने रोका, जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है, या तू बड़े दर्जे वालों में से है? इसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया। इरशाद हुआ कि यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है, और तुझ पर क्यामत के दिन तक मेरी लानत और फटकार रहे। कहने लगा, मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मोहलत वालों में से है, मुतय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा, मगर इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, बजुस तेरे उन बंदों के जो चुने हुए और पसंदीदा हों। अल्लाह हमें भी मुखलस कर दे। फरमाया, सच तो ये है, और मैं सच ही कहा करता हूँ, कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों में से भी जहन्नुम को भर दूंगा। कह दीजिए, मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता, और न मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। इन हुआ इल्ला जिक्रुल आलमीन, ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे। ये थी आयत नंबर 65 से 88, 65 to 88। इन आयत का टॉपिक है पूरी सूरत, इसने और पिछली सूरत ने हमें क्या दिया? इखलास दिया ना, अल्लाह ताला इखलास ही दे दे। जी लिखिए, जिनसे शैतान मायूस हुआ, ए अल्लाह हमें उनमें शामिल कर दे। उसने खुद ही गिव अप कर दिया था कि ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। पिछले साल जब हमने दौरे कुरान किया था, तो उसमें हमने ये किया था कि जहां भी कोई ऐसी बात आयत आती थी, तो हम उस पर दुआएं करते थे। यानी पिछला, अगर आपको बाद में कभी मौका मिले वेबसाइट पे 2008 का, तो उसमें दो चीजें थी, एक असमाउल हुस्ना थे, अल्लाह तला के नामों को लेबोरेट थोड़ा किया गया था, और दूसरा दुआएं मांगी गई थी। अल्लाह तला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।